Welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Amit Goel.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमित.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन.
Benchmark indices closed lower amid high volatility. Sensex down by 269 points while Nifty ends at 23,501. Crude oil futures on course to rise for a second week amid signs of improving demand. And at the multi-commodity exchange, gold and silver prices exhibit mixed signs.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट. सेंसेक्स 269 अंक लुढ़का. निफ्टी भी गिरावट से 23,501 के स्तर पर बंद हुआ. मांग में बढ़ोतरी से कच्चे तेल की कीमतों में दूसरे सप्ताह तेजी का दौर. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुझान. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.4% के नुकसान से 269 अंक गिरकर 77,210 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 66 अंक गिरकर 23,501 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.3% की गिरावट रही जबकि स्मॉल कैप सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा.
Indian benchmark indices ended lower in the highly volatile session today. At close, the Sensex was down by 269 points, 0.35% at 77,210, and the Nifty was down by 66 points, 0.28% at 23,501. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index was down by 0.26%, while the small-cap index gained 0.06%. 11 out of 30 companies registered gains in the Sensex pack. The top three gainers today were Bharti Airtel, which went up by 2.32%, Infosys up by 1.08%, and TCS up by 0.59%. Conversely, the three major laggards were UltraTech Cement, which was down by 2.22%, Larsen & Toubro down by 1.78%, and Tata Motors, which was down by 1.74%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 out of 20 sectors were in a loss. The top three gainers were telecommunication sector, which went up by 1.44%, tech sector up by 1.01%, and IT, as well as services sector, which went up by 0.74% each. Whereas oil and gas was down by 1.28%, FMCG down by 1.08%, and energy was down by 1.02%, which were the three major laggards. The overall market breadth was positive. Out of 3,987 companies, the shares of 1,784 companies advanced, 2,086 companies declined, and 117 companies remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज मामूली बदलाव से 83.54 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 0.2% की बढ़त से 105.8 के स्तर पर दर्ज हुआ. पुनीत, किस तरह से देखेंगे शेयर बाजार में आज की स्थिति के बारे में? क्या बाजार में, चूंकि स्तर इतना ऊंचा था, तो कहीं न कहीं ये मुनाफा वसूली या गिरावट ये लगभग जरूरी थी, या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? क्योंकि अभी हम अगले 15 से 20 दिनों के बाद हम पूर्ण बजट की भी आहट देखने को मिलेगी, हमको सरकार की नीतियां उस बारे में भी मिलेंगी. तो बाजार क्या कुछ सधी हुई दिशा से चलना चाहता है, या पहले तिमाही के जो नतीजे भी हमको 15 दिन के बाद ही तकरीबन देखने को मिल जाएंगे, या उसकी आहट बाजार को अच्छी नहीं नजर आ रही?
तो बिल्कुल आपने सही कहा अमित, कि आने वाले मुझे लगता है कुछ सप्ताह काफी न्यूज ड्रिवन टाइम होगा. कंपनी के जो कंपनी जगत के रिजल्ट हैं फर्स्ट क्वार्टर के, जून एंडिंग के, वो आने शुरू हो जाएंगे अगले सप्ताह के बाद. बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और साथ ही जो हम देख रहे हैं कि बाजार में जो लगातार एक रिकॉर्ड स्तर पर बाजार चलता रहा है और काफी तेजी हमने बाजारों में देखी है, पर्टिकुलरली इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद. जब मार्केट्स में वो उसको काफी सराहा और काफी पॉजिटिव उसका रिएक्शन आया, तो मुझे लगता है कि अब कुछ हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और साथ में क्योंकि ये एक अगेन एक अनसर्टेनिटी का पीरियड होता है, इलेक्शन थोड़ी अपना बजट के प्रपोजल्स आने हैं और रिजल्ट्स आने हैं, तो मुझे लगता है वही एक कारण है मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी और थोड़ी वॉलिटिलिटी का।
एंड मोर न्यूज, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टुडे हेल्ड प्री बजट कंसल्टेशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फार्मर एसोसिएशंस एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट न्यू दिल्ली अहेड ऑफ द फोर्थ कमिंग जनरल बजट। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर Secretary, Department of Economic Affairs and senior officers from the Agriculture Ministry. Puneet, just give us an overview of what to expect from the market, because you have the futures and options and you have the cash market. What is the weekly F&O market telling you as far as the movement of the Nifty and how it translates into the Sensex movement? Because it's corrected by 269 points, there seems to be some apprehension about what the results are going to be in the future. How do you see the market going next week only?
Absolutely. So next week is going to be quite active, because first of all, we will have the expiry of the futures and options coming up next week. And as you know, this month has been a very important month, because there were so many events, political events and economic events in this particular month. So there's a lot of build-up of positions, long and short, in this month.
But there's a difference between the weekly F&O expiry and the monthly F&O expiry.
Absolutely. And so we have a weekly expiry of limited indices, which is Nifty basically, or Bank Nifty every week on Wednesday and Thursday. But when it comes to monthly expiry, it is not just the indices, it is also the stocks. So there are about 160, 170 stocks on which futures and options are traded. So all those expiries also take place on at the end of the month, so which is due next week. So clearly, I think market-wise, there's a lot of build-up of positions in this particular month, and I expect a lot of volatility going forward. On top of it, the factors that we discussed earlier, all those uncertainties, and there's also this strong message in the market that SEBI and regulators want to curb excessive speculation in the market. So we know that the futures and options trades, which are really heavy in this market, and India is among now the largest F&O markets in the world, I think regulators are not looking about it very kindly, particularly because retail investors usually get crushed. They lose money in F&O markets. So I think market is also apprehensive that there will be a significant curb on F&O trading in the forthcoming budget or either through regulatory actions.
So there's a lot of speculation going on right now, built up positions in the cash market, not in the F&O. We'll talk about the cash market only in terms of what the corporate results are going to be like. So you have investors who are buying into mid-cap index or the large cap index or the small cap index in the apprehension that the results would be quite good. What is the consumption in the macro economy right now which will encourage that kind of buying in advance right now?
So, Arjun, if you look at the numbers that we have got so far over the past many months, we seem to have a very strong pickup in the Indian economy. So our GDP data, which came for last quarter, was actually surprisingly high. It was about 8% GDP growth. We're expecting almost 7.5% GDP growth in the current year. So markets are really geared to see very good corporate results, very good demand. Only thing that we are witnessing is that the demand in the rural sector is still not picking up too well. So if you look at the cars, the small cars sales are not picking up. The two-wheeler sales are not picking up too much. So there is some kind of a slowdown in the rural economy still, I would say. Or rather, I would say that rural economy has not recovered from the post-pandemic blues, so to say. So I think one of the key factors in the budget, upcoming budget, would be to watch how the government wants to push the rural economy. And of course, a host of other measures in terms of capital gains tax, etc. So I think it's going to be a very significant budget, because it will lay the roadmap for the next 4-5 years of this government and what direction we are now going to take, because this is the next generation of reforms that we are expecting from finance minister.
पुनीत, जैसा आपने कहा कि चुनाव के बाद जो नई सरकार है उसके लिए अब उसको फोकस एरिया भी कहीं ना कहीं बदलने की या उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। इसी दिशा में जैसा कि अभी अर्जुन ने भी बताया कि वित्त मंत्री ने कृषि जो समितियां हैं उनके प्रमुखों से भी बैठक की है, क्या मानने के लिए ये पर्याप्त कारण है कि सरकार का फोकस, क्योंकि शहरी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि शहरी क्षेत्रों में कोविड के बाद का असर काफी हद तक सीमित करने में मदद मिली है, बट शायद ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी मदद नहीं मिली है या वहां पे कुछ ज्यादा बड़े कदम उठाने की जरूरत है। तो हम ये मानने के हमारे पास पर्याप्त कारण है कि जो अब बजट आएगा वो ग्रामीण क्षेत्रों पर शायद ज्यादा फोकस हो सकता है, और चूंकि साथ के साथ आप ये भी कह रहे हैं कि कहीं सुधारों को भी एक दिशा देनी है, तो किस तरह से ये बजट दिशा देगा? और बाजार, अगर हम अब शेयर बाजार की बात करते हैं, तो क्या शेयर बाजार इन सारी चीजों के मद्देनजर इसी तरह से एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा?
तो बिल्कुल आपने सही, एक क्योंकि जब हम शेयर मार्केट में या बाजारों की बात करते हैं तब हमें यह देखना होता है कि इकोनॉमी के कौन से क्षेत्र हैं जो आगे आने वाले समय में ज्यादा ग्रोथ करेंगे, और हम उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा निवेश करते हैं। तो मुझे, मेरा ऐसा अनुमान है कि आने वाले जो, अभी देखिए पीछे अगर 3-4 साल देखें तो वहां पर जो प्रीमियम स्पेंडिंग थी, यानी बड़े होटल्स में स्पेंडिंग, लग्जरी ट्रेवल स्पेंडिंग या इस प्रकार की जो खर्चे थे वहां पर हमने, या गाड़ियों में भी अगर आप देखें तो SUVs की सेल्स होती वो ज्यादा थी। तो जिसे हम उसको ट्रेंड कह रहे हैं प्रीमियमाइजेशन, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वहां पर खर्चा ज्यादा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस समय जो सरकार जो कोर्स करेक्शन देखेगी इकोनॉमी में या कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहेगी, वो डिफेंस हम देख रहे हैं कि वहां बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर अपना इम्पोर्ट्स हम कम करना चाहते हैं, भारत में हम ज्यादा बनाना चाहते हैं और वो क्षमता भी है भारत में। दूसरा रूरल इकोनॉमी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस एंड और मैन्युफैक्चरिंग और रूरल इकोनॉमी, ये दोनों काफी बड़े फोकस एरियाज होंगे गवर्नमेंट के।
पुनीत, जहां तक हम जब रोजगार की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ठीक है रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं मदद मिलती है सरकार की दिशा से, लेकिन जब बड़े पैमाने पर रोजगार करने की बात आती है तो ये होता है कि आमतौर पर कि उद्योगीकरण बड़े पैमाने में करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में अगर कहीं रोजगार हो सकता है तो शायद ये क्षेत्र काफी मददगार साबित होता है, ऐसा मानने के पर्याप्त कारण भी हैं। तो सरकार किस तरह से बैलेंसिंग करेगी, संतुलन बैठाने में कामयाब होगी, क्योंकि उसको रूरल इकोनॉमी को भी ऊपर उठाना है, जिस तरह से आपने कहा कि अगर वहां से डिमांड नहीं निकलती है तो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और बड़ी गाड़ियां तो बिक रही हैं लेकिन टू व्हीलर्स और बाकी जो छोटी गाड़ियां हो उनको उसके लिए सेटबैक हो रहा है, किस तरीके से कितना स्कोप बना पाएगा?
यही तो चैलेंजेस हैं सरकार के सामने। आपके हमारे लिए आसान है कहना, लेकिन जब आप बजट बनाने बैठते हैं तो हर क्षेत्र को उम्मीद होती है कि उनको कुछ बेनिफिट मिले, मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी,
और साथ ही साथ एक ये भी चैलेंज है कि जो सुधारों की या ढांचागत सुविधाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तेजी चल रही है उसको भी बरकरार रखना है।
और देखिए एक बड़ी खास बात है, पिछले 4-5 सालों में जो जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख रहे हैं वो सरकार का खर्चा, जैसे सरकारी खर्चा कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उससे वो ड्राइव हुआ है। जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक नहीं आएगा इस बाजार के अंदर, तब तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार अब बजट डेफिसिट को कम करेगी आने वाले समय में। तो इसलिए जो सरकारी खर्चा है वो ऐसा इसी स्पीड पर आगे नहीं बढ़ सकता, प्राइवेट कंजम्पशन या प्राइवेट एक्सपेंडिचर केपेक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है।
वेल, दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड लीड टू डिफेंस स्टॉक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स टू गो अप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज देयर ऑर्डर बुक्स विल गेट फिल्ड अप। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइवेट कंजम्पशन, how do you see that picking up, especially in the next quarter? Because the stock market may not be looking 1 year down the line, they'll be looking at the next quarter itself, what the corporate results would be like. So if you look at FMCG, auto, what are their sales figures like? Are they able to convert their inventory into sales so that there is actual margin in terms of net profit, which will translate into higher value for shareholders?
So Arjun, honestly, so until now, last 2-3 years, we have seen very good growth for the industrial sector. But lately, last couple of months, we have seen data where the growth is moderating. So I'm not saying it is coming to a halt, but it is moderating. It is no longer, so if you look at car sales, they are no longer growing at the pace that they were growing earlier. So clearly, this challenge is there. Fortunately, when we look at the private sector capex, we look at something called capacity utilization. And in industrial sector, capacity utilization in the last many years has been below 75%. 75% is considered to be the threshold beyond which private sector starts investing in new capacity.
But that's business consumption.
But capex will lead to building of factories, therefore employment in terms of construction. Then new factories obviously lead to more employment.
Multiplier effect.
Absolutely. So like Amit was saying, unless we promote industrial activity, manufacturing activity, particularly in the small and medium sector. See, that is where jobs will be created. It's not as if that large companies create bulk of jobs. The bulk of jobs are really created at the local level. So I guess that is where this whole budget will really focus on.
अच्छा पुनीत, आप भी बात करी ग्रामीण क्षेत्र से पर आधारित अर्थव्यवस्था अगर होती है, आपके हिसाब से कितना समय लगता है? जैसे एफएमसीजी कंपनी है, अगर वहां पे कहीं बूस्टअप आना है तो अगर आज निवेश होना शुरू होता है तो हम क्या माने कि कितना उसका इफेक्ट आने में कितना समय काल लग जाता है? दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ, जो प्राइवेट आपने कैपिटल के लिए आपने बताया कि उसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार की इच्छा भी है, मंशा भी है, वहां क्या कमी रह रही है जिससे कि प्राइवेट कैपेक्स को मजबूती मिले?
तो जैसे आपने पहला सवाल आपका था कि कितना समय, जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो ये कहती है कि करीब 2 क्वार्टर्स, यानी अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो उसका असर आने में करीब 6 महीना लगते हैं। इवन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और अगर कंजम्पशन हमें प्रमोट करनी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट रेट कट करने पड़ेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन का भी चैलेंज बना हुआ है तो आरबीआई के पास कोई आसान रास्ता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट करके वो कंजम्पशन को बूस्ट कर सके। तो 6 महीना करीब लगता है बिटवीन पॉलिसी स्टेप एंड द इम्पैक्ट स्टार्ट कमिंग इन टू कंजम्पशन।
व्हाट्स अ टिपिकल टेन्योर फॉर अ बिजनेस साइकिल? इज इट क्वार्टर टू क्वार्टर और 2 क्वार्टर?
नो, बिजनेस साइकिल आर मच लॉन्गर। बिजनेस साइकिल्स टेक 2 to 3 years, सो इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटीज नाउ, probably those factories will be built in 1-1.5 years and then the production will come into play. So it takes about 2-3 years.
मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी अर्जुन है वो ये बेहतर जानना चाहते हैं कि अगर एफएमसीजी शेयर आज जिस स्थिति में है वो 3 महीने बाद बेहतर स्थिति में होंगे 6 महीने बाद?
देखिए मेरा आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, और ये सवाल हमसे कई बार पूछा जाता है बाजार के परिपेक्ष में कि अब यहां से हम क्या करें। सो आई बिलीव एज अ डिफेंसिव सेक्टर as for investment, FMCGs are looking quite good because the valuations are very attractive. In fact, last 2-3 years, the valuations haven't moved up at all when the market was moving higher. So I think a lot of money will now get rotated from other sectors where profit booking may happen, and therefore the money will go to FMCG. I think it's a good option to look at.
पुनीत, आपने अभी बात करी कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अभी भी कहीं ना कहीं चिंता का कारण है या सरकार के लिए कहीं सतर्क भरे कदम उठाने पे बाध्य कर रहा है, लेकिन अगर पिछले कुछ समय में देखें तो जो मुद्रास्फीति के जो मुख्य कारण थे वो खाद्य मुद्रास्फीति काफी बड़ा उसके लिए कारण थी। अभी फिलहाल जब मानसून आएगा फिर से हमें देखना पड़ेगा कि सब्जियों की उपलब्धता या अनाज की उपलब्धता, उस समय थोड़ी सी कमी आएगी, उस पर दबाव रहेगा। अभी भयंकर गर्मी के कारण भी सब्जियों और उनकी कीमतों में बढ़त रही है, क्या ये कारण इतने बड़े रहेंगे कि सरकार को इस दिशा में भी संतुलन बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी सुधार हैं शायद कहीं पिछड़े? और उद्योग जगत को तो पूंजी चाहिए, और पूंजी सरकार की जब तक ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी उसको अतिरिक्त पूंजी नहीं मिलेगी, उनमें शायद उद्योग जगत को हौसला भी नहीं आएगा जब तक कि पूंजी की लागत में कटौती नहीं होगी।
तो
क्या माना जाए?
तो आपने सभी जो काउंटर फोर्सेस हैं उनका आपने जिक्र करा, और ये बहुत मुश्किल है। आपने खाद्य फूड इन्फ्लेशन की बात करी, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि यूजुअली हम समझते हैं कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, पर आपने हाल ही में देखा होगा इसी सप्ताह सरकार ने एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने बढ़ाई है 14 क्रॉप्स पर, 14 प्रकार की जो उत्पाद है उस पर आपने एमएसपी बढ़ाया है। तो एमएसपी बढ़ाते ही आप ये मान सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन को फीड करेगी, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि आपको रूरल इकोनॉमी को, किसानों की आय को सपोर्ट करना है, तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं। जैसे आप एमएसपी बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। तो देखते हैं कि कैसे ये अचीव किया जाएगा।
लेट्स सी इफ इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड। नेक्स्ट स्टोरी इज ऑन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल चेयर द 53rd GST Council meeting in New Delhi tomorrow. GST Council is meeting for the first time after the formation of the new government. The last GST Council meeting was held on the 7th of October last year. During the meeting, the Council took several decisions. The Council had also recommended nil rate for food preparation of millet flour in powder form. The Council had also decided to reduce GST in molasses from 28% to 5% in relief to cane farmers for faster clearance of dues and to reduce cost of manufacturing cattle feed. So what's your take on जीएसटी रैशनलाइजेशन?
ये एक काफी महत्वपूर्ण बैठक साबित हो सकती है क्योंकि बहुत दबाव है सरकार का, विशेष कुछ खासतौर पर क्षेत्रों में जहां जो जीएसटी की दरें बढ़ाई गई थी 12 से 18% तक भी की गई थी, क्या सरकार के पास वाकई इतना बड़ा स्कोप होगा कि वो दरों को तर्कसंगत बनाए या उसमें कुछ कटौती कर पाए, क्योंकि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो तो बड़ा उत्साहजनक है।
बिल्कुल ठीक आपने कहा अमित, और जरूरत भी है कि इसको रैशनलाइज किया जाए, लेकिन कितना फिस्कल हेडरूम है, कितना टैक्स हिट ले सकती है सरकार, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार के सामने, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि काफी बड़ा एक्सपेंडिचर एजेंडा सामने खड़ा है रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेडरूम नहीं है गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस को रिलीफ देने का। तो हालांकि रिफॉर्म्स की डायरेक्शन डेफिनेटली इसमें क्लैरिफाई होगी, पर कोई बहुत बड़ी उम्मीद हम ना रखें कि कोई टैक्स कट्स आने वाले हैं
अभी अभी इस बात की संभावना। जैसे बजट की चर्चाएं शुरू होती है ना, तो सबसे पहले उसमें आम जो या तो मध्य वर्ग है या वेतनभोगी जो वर्ग है उसकी उम्मीदें थोड़ी थोड़ी ही परवान चढ़नी शुरू हो जाती हैं, जो पिछले कई वर्षों से उसमें कुछ हुआ नहीं, कि अब की बार आय कर दरों में कहीं ना कहीं सरकार राहत देगी। और अखबारों में भी आप अक्सर देखिए इस तरह की चीजें छपती रहती हैं। आपका क्या मानना है?
सच बात तो यह है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो टैक्स कलेक्शन रिक्वायरमेंट है सरकार की, जो फिस्कल हेडरूम है वो बहुत कम है सरकार के पास कोई सिग्निफिकेंट टैक्स रिडक्शन करने का। थोड़ा बहुत आप सेंटिमेंटल इमोशन वो आप बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं, सिग्नलिंग के लिए कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ हेडरूम ही नहीं है सरकार के पास, वो कैसे करें।
चलिए नजर डाल लेते हैं भारतीय बाजारों के बाद एशियाई बाजारों में। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.7%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% की गिरावट से बंद हुआ। जापान का निकेई लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा, हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट साइन सूचकांक 0.2% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरूआती रुझानों में गिरावट रही। फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग 0.5% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
To what extent are geopolitics and inflation data driving Asian and especially European indices?
So interestingly, Arjun, and I haven't seen this in the last 20 years, honestly, markets are completely ignoring the warning signals from the geopolitics, from inflation, from monetary policy, from economic growth numbers. Markets are just powering themselves on liquidity and they're ignoring all red flags. But my own sense is that sooner or later we will see the markets will catch up with these things. There are a lot of challenges ahead, particularly the elections in US will reset the ties with China, which will again reset the whole trade scenario in the world. So there are a lot of I would say challenges ahead, and markets should right now they're ignoring these challenges, but I'm sure sooner or later they will wake up to it.
And what about imports into Europe, which was erstwhile with Russia? How has that been sorted out?
So right now they're kind of muddling through it. In fact, they have a mixed policy. They import some energy. They keep on saying we don't want to import energy, and yet they're financing Russian deficits. So clearly, I think it's all mixed up. There's no clear cut policy. And this is, we must remember, this is a year of elections across so many countries. So my own sense is that by next year, when these elected governments are in place, we'll probably see a more firm policy.
I think the next story would have a clearer idea about what's going to happen in the U.S. with the presidential elections on. U.S. stock market ended mixed yesterday, with the Nasdaq ending a 7-session streak of record closing highs. The Dow Jones Industrial Average gained 0.77%, while the Nasdaq Composite slipped 0.79%, and the S&P 500 fell 0.25%. It appears to be a correction only in the U.S. market, not a major correction, but a minor correction, even though the Dow Jones, in fact, right now, has gone up by almost 300 points. What's your take, especially with the U.S. currency, the U.S. dollar index at 106, and it's only powered to go up? It's also being challenged by gold. How do you see the U.S. economy right now and the new world order you're talking about?
So, of course, it's a subject for much longer debate and discussion. But I think largely the U.S. economy is doing very well right now. They have a few challenges ahead. But if you look at the U.S. stock markets particularly, it is totally run by a few handful of stocks. Just six or seven stocks.
NVIDIA has become the most valuable company.
NVIDIA is now the most valuable, a $3.6 trillion worth, much ahead of Microsoft and Apple. So clearly, I think this market is running on a different platform, I would say, by running on different reasons, and not reasons of pure numbers or pure
profits. Puneet, I have to ask you, the liquidity that's been created by the subsidy granted by President Biden during Corona by releasing $4 trillion into an economy without any productivity behind it, Are we still likely to feel the effects of it down the line?
We are feeling the effects of it, first of all. Secondly, in addition to the subsidy, the US government is still running an annual deficit of $3 trillion. So you can imagine the kind of money which the US government is pumping into the economy. And fortunately for them, the US dollar has still not reacted. It continues to be a very strong currency, and which is what gives them the ability to keep on printing dollars and keep them throwing into the system. But again, I think it's a huge challenge, and sooner or later, it will really, I think it will become a problem for the economy going forward.
ये सिर्फ लेकिन क्या अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं धक्का लगता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कई अर्थशास्त्री इस मामले में वाकई में बहुत चेतावनी जारी करते हैं कि अमेरिका डॉलर पर डॉलर छाप रहा है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसकी डॉलर मजबूत है, क्या ये कहीं भविष्य के लिए खतरे का संकेत हो सकता है?
बड़ा खतरे का, और मुझे लगता है जो नेक्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, चाहे वो इस वर्ष आए चाहे अगले वर्ष आए, वो डेफिनेटली यहीं से शुरू होगा, अमेरिका से शुरू होगा, जैसे 2007-08 में हुआ था, और मुझे लगता है बहुत बड़ा क्राइसिस होगा.
डू यू फील दैट दे हैव मैनेज्ड द सप्लाई चेन वेल, विच इज वाई वी नॉट सीइंग द इफेक्ट ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द डॉलर?
So supply chains are trying to shift out of China. They want to tackle those disruptions which create problems in the economy. But I think again, the problem is much larger. It can't be solved overnight and by printing more dollars. They're just riding that wave right now. But I think they need to get the deficits under control and to get inflation under control.
Let's have a look at the oil market. Now, crude oil futures were little changed today, but on course to rise for a second week amid signs of improving demand and falling oil and fuel inventories in the U.S. Brent crude was down by 0.1% to $85.62 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate crude was lower by 0.1% to $81.21 per barrel when reports last came in. Very briefly, we have data coming in from the U.S. that Biden, in fact, managed to bring down prices by releasing the strategic petroleum reserves into the global market, thereby increasing supply. What is the strategy of the global crude market vis-a-vis OPEC?
So clearly the Western governments have been able to manage their situation, energy situation, very well, because Europe was, otherwise they would have really faced an explosive situation on inflation front. They have managed oil prices very well. They have remained stable in spite of all the Russia-Ukraine war and the tension in the Middle East. They have done very well so far, and going forward I think they will manage this situation. So inflation from fuel may not be a problem, but I think food and monetary policy driven inflation could be a key issue.
नफर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी की कीमतों में आज मिला जुला दौर रहा. अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.3% की मामूली बढ़त से 72,824 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. हालांकि चांदी 0.3% की गिरावट से 91,346 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. वैश्विक बाजारों में सोना लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त से $2,380 प्रति 20 सेंट प्रति औंस के स्तर पर रहा. चांदी 0.7% की गिरावट से $30.93 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करती नजर आई. पुनीत, फिर वही सोने और चांदी, क्या हमें इस सोने और चांदी की जो कीमतें हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकेत हैं, या अमेरिका का जो व्यापार घाटा है, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था आर्थिक घाटा है, क्या उससे हमको जोड़ना वाकई में एक सही कदम है? क्योंकि अगर हम देखें तो चांदी तकरीबन हम $20-22 से देख रहे थे, $31 के आसपास हो गई. सोना भी $2,350 के आसपास फिलहाल बना हुआ है. और चूंकि हमने पिछली बार भी बात करी थी कि केंद्रीय बैंकों ने, वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है, क्या संकेत है?
देखिए, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको चलते मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में भी बाइंग बनी रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का थ्रेट बना हुआ है और ये आगे जो खतरा है इकोनॉमिक उसको लेकर गोल्ड में बाइंग अभी चालू रहेगी.
सोने और चांदी में कौन पहले ज्यादा तेज छलांग लगाएगा, फिर वही एक स्वाभाविक सा सवाल.
Just briefly, its effect on the US dollar.
So, gold, of course, usually moves in direction opposite to the US dollar. So, my own take is that if and when dollar starts falling after the US election, I think gold will really take off.
Well, it's time now for the headline. Thank you so much, Puneet, for being with us on Market Month and giving us the valuable views on the movement of the stock market.
Thank you, Arjun.
Let's have a look at the closing headlines now. Benchmark indices closed lower amid high volatility. Sensex down by 269 points, while Nifty ends at 23,501. Crude oil futures on course to rise for a second week amid signs of improving demand. And at the multi-commodity exchange, gold and silver prices exhibit mixed signs. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.
Mark is